ददाति स पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथ नितन्तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सगणलिता श्रीविशाखान्वितं स हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशगोपिकाकन्त राधाकन्त नमस्तुते तप्तकञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि विश्वभानुसुते देवि प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नम्ने गौरतिसे नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्रीअद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
आज यहाँ पर उपस्थित भक्त सज्जन वृंद मातृवृंद, हम कल श्रवण कर रहे थे किस प्रकार भगवत पार्षद वृंद जो बैकुंठ से आए हुए थे वो किस प्रकार शिव जी की प्रशंसा कर रहे थे और उसके पश्चात जब उन लोगों ने देखा कि शिवजी अपनी प्रशंसा सुनकर बहुत लज्जित हो रहे हैं और चुपचाप खड़े हैं तो ये भगवत पार्षद वृंद जो बैकुंठ से आए हुए थे वो समझ गए कि शिवजी के सामने उनकी प्रशंसा उनको पसंद नहीं है, क्योंकि जो महान भक्त होते हैं वो अपनी प्रशंसा दूसरों के मुख से सुनने से लज्जित हो जाते हैं, वो आनंद या गर्व का अनुभव नहीं करते। तो शिवजी महान वैष्णव होने के कारण वो लज्जित अनुभव कर रहे थे और माथा नीचा करके खड़े थे, कुछ नहीं बोल रहे थे। तो वैष्णव गण जो आए थे बैकुंठ से भगवत पार्षद गण, उन लोगों ने अब गोप कुमार की तरफ देखा, क्योंकि पहले जब वो पहुंचे थे महाकालपुर में अर्थात मुक्तिधाम में तो उस समय उन लोगों ने सुना किस प्रकार शिव जी वैकुंठ की प्रशंसा कर रहे हैं और वैकुंठ जाने का मार्ग गोप कुमार को बता रहे थे, तो ये लोग बहुत प्रसन्न हुए थे। अब उन लोगों ने गोप कुमार को आलिंगन किया और उनको आश्वस्त करने के लिए उन लोगों ने कहा गोप कुमार से कि अस्मत ईश्वर सत मंत्र उपासक उमापति प्रिय। तो भगवत पार्षद वृंदों ने कहा गोप कुमार से कि हे गोप कुमार, आप अस्मद ईश्वर सत मंत्र उपासक, तो हम लोगों के जो ईश्वर हैं, स्वामी हैं, उनके सात मंत्र के आप उपासक हैं, अर्थात ये भगवत पार्षद वृंद स्वीकार कर रहे हैं गोप कुमार को कि ये उनमें से एक है, इसलिए अस्मत शब्द का प्रयोग कर रहा है कि हमारे जो ईश्वर हैं, प्रभु हैं, इसका अर्थ है कि गोप कुमार के भी प्रभु हमारे प्रभु हैं और उनके जो सात मंत्र उसके उपासक गोप कुमार हैं, ये लोग जानते हैं। वैकुंठवासीगण ये दूसरों के भावों को समझ जाते हैं और विशेष रूप से जो दूसरे भक्त होते हैं उनके भावों को समझ जाते हैं। तो वो जानते थे कि गोप कुमार मदन गोपाल के उपासक हैं और जो दशाक्षर गोपाल मंत्र हैं उस मंत्र की उपासना करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, ये जानते थे। इसलिए उन लोगों ने कहा कि आप हमारे जो प्रभु हैं उनके सात मंत्र उपासक। तो इसका अर्थ है कि गोप कुमार ने कोई मनगढ़ंत मंत्र का जप वो नहीं कर रहे थे, जैसे आजकल लोग अपने आप कुछ मंत्र बना देते हैं, जैसे उनको पसंद है ऐसा मंत्र बना देते हैं और अपने शिष्यों को देते हैं या दूसरों को बोलते हैं उसका जप करने के लिए, तो वो सत मंत्र नहीं हो सकता। ये सत मंत्र जो शास्त्रों में विधान है और उस मंत्र को सत गुरु से व्यक्ति प्राप्त होता है, तब जाकर वो मंत्र फल प्रदान करता है। ऐसा नहीं है कि मंत्र शास्त्र में लिखा है, कोई शास्त्र पढ़ करके मंत्र को जान लेता है और स्वयं जप करने लगता है, क्योंकि वो गुरु से प्राप्त मंत्र नहीं है, इसलिए मंत्र निष्फल होता है। इस सद्गुरु से ये मंत्र को प्राप्त करना है, इसलिए पद्म पुराण में भी बताया गया कि जो प्रामाणिक गुरु परंपरा में नहीं आते हैं, तो उनका जो मंत्र है निष्फलामता है, उनका मंत्र निष्फल हो जाता है। इसलिए जो सद्गुरु हैं वो प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय में आना चाहिए उसको, और उस वैष्णव संप्रदाय का जो मंत्र है शास्त्र सम्मत मंत्र उसको सद्गुरु से ग्रहण करना आवश्यक है, तब वो मंत्र सफल होता है। तो यहां पर ये भगवत पार्षदगण कह रहे हैं कि आपने हमारे प्रभु के सत मंत्र को ग्रहण किया है। आप सत मंत्र के उपासक हैं। कैसे? उमापति अपने गुरु से, अपने सदगुरु से ग्रहण किया है उस मंत्र को, जिसके बल पर आप अभी आकर मुक्ति धाम में पहुंचे हैं। ये गोप कुमार अपने मंत्र के बल पर ये स्वर्गलोक, महरलोक, तपोलोक, जनलोक, सत्यलोक ये सब प्राप्त कर चुके हैं और ब्रह्मांड के आवरण को भेद करके अब मुक्ति धाम महाकालपुर में पहुंचे। तो ये मंत्र के प्रभाव से ऐसा संभव हुआ है और ये भगवत पार्षद गण, वैकुंठ वासी गण ये जानते थे इस बात को, इसलिए कहते हैं कि आप सत मंत्र के उपासक हैं और उमापति प्रिय। उमापति शिव, शिव जी के आप प्रिय हैं, क्योंकि अभी अभी वो लोग सुन रहे थे किस प्रकार शिव जी गोप कुमार को उपदेश दे रहे थे, वैकुंठ के संबंध में बता रहे थे और कैसे वैकुंठ को प्राप्त किया जा सकता है उसके संबंध में भी बता रहे थे। तो ये भगवत पार्षदगण कह रहे हैं कि आप उमापति प्रिय भी हैं और उसके साथ साथ गोपनंदन, ये गोवर्धन के गोप के पुत्र हैं, अर्थात ब्रजवासी हैं और ब्रजवासीगण स्वाभाविक रूप से कृष्ण के उपासक होते हैं। कृष्ण के प्रति उनका स्वाभाविक प्रेम होता है, चाहे हम लोग जैसे विधि विधान या साधना भक्ति का अभ्यास वे लोग ना करते हो, किंतु कृष्ण के प्रति ब्रजवासियों का स्वाभाविक प्रेम ये स्वतः सिद्ध है। तो ये वैकुंठ के पार्षद गण कह रहे हैं कि आप गोप नंदन हैं, गोप के पुत्र हैं और भक्तेषु भवन्तं गणयेमहि, और आपको हम भगवान के भक्तों में आपकी गणना करते हैं। हम जैसे भगवान के भक्त हैं, आप भी भगवान के भक्त हैं, भक्तों में आपकी गणना हम करते हैं। अर्थात भगवत पार्षदगण स्वीकार कर रहे हैं कि ये गोप कुमार भगवान के भक्त हैं। गौड़े गंगा तटे जात माथुर ब्राह्मणोत्तम। तो इस श्लोक में भगवत पार्षद गणों ने कहा कि आप सदगुरु से सत मंत्र प्राप्त हुए हैं, अब गोप कुमार के गुरु के संबंध में बता रहे हैं वैकुंठ के पार्षद गण, क्योंकि उनको पता है कि उनके गुरु कौन है। जबकि अब तक हम गोप कुमार के गुरु के संबंध में अधिक नहीं जानते थे, अभी तक जहां जहां अपने गुरु के साथ गोप कुमार की भेंट हुई है, गुरु गोप कुमार को मंत्र प्रदान किए हैं और भगवत प्रेम में विफल होते हुए दिखाई पड़े हैं, और कभी कभी अकस्मात गोप कुमार के साथ उनकी भेंट होती है और उस समय वो गोप कुमार को थोड़ा बहुत उपदेश देकर वो फिर अंतर्ध्यान हो जाते थे। इसलिए मन में ये स्वाभाविक प्रश्न उठना चाहिए कि वस्तुतः इनके गुरु कौन थे जो अकस्मात प्रकट होते हैं और भगवत प्रेम में विह्वल होते हैं, गोप कुमार को कुछ उपदेश देते हैं, पुनः अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो हमने देखा अभी तक गोप कुमार के साथ उनके गुरु की भेंट दो तीन बार ही हुई, किंतु उनके संबंध में अभी तक हमें पता नहीं कि उनके गुरु कौन थे। अब वैकुंठ पार्षदगण बता रहे हैं गोप कुमार को उनके गुरु के बारे में, गोप कुमार को भी पता नहीं है। तो कह रहे हैं गौड़े गंगा तटे मात जात माथुर ब्राह्मणोत्तम, कि तुम्हारे जो गुरु हैं सदगुरु हैं इनका जन्म, ये मथुरा के ब्राह्मण थे और इनका जन्म गौड़ देश में गंगा के तट पर हुआ था। जयंत नामा, और इनका नाम था जयंत। कृष्णस्य अवतारस्ते महान गुरु, और तुम्हारे जो गुरु हैं ये कृष्ण के अवतार हैं, इसलिए वो महान है। तो जो कृष्ण का अवतार हो तो इसका अर्थ है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो सदगुरु हो सकते हैं, क्योंकि कृष्ण वंदे जगत गुरु, कृष्ण स्वयं सारे जगत के गुरु हैं और उनकी परंपरा में जो आते हैं वही सदगुरु हो सकते हैं। जो वैष्णव परंपरा है, भक्तों की परंपरा है, और विशेष रूप से कलयुग में चार वैष्णव परंपरा के बारे में पद्म पुराण में बताया गया है कि अथ कलो भविष्यन्ति चत्वार संप्रदायिना श्री ब्रह्म रुद्र सनका वैष्णवाखिति पावन, कि सारे जगत का उद्धार करने के लिए चार वैष्णव संप्रदाय होंगे। ये विशेष रूप से कलयुग की बात कह रहे हैं कि श्री ब्रह्म रुद्र सनका, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनक संप्रदाय, ये चार प्रामाणिक संप्रदाय कलयुग में है, और जितने सारे संप्रदाय ये प्रामाणिक नहीं है पद्म पुराण के अनुसार। तो श्री संप्रदाय जो रामानुज संप्रदाय है, वो श्री संप्रदाय, वो प्रामाणिक संप्रदाय है। ब्रह्म संप्रदाय जो मध्वाचार्य संप्रदाय और जिस संप्रदाय में हम लोग आते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने उस संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण की थी और हमारे प्रभुपाद भी उसी संप्रदाय के हैं। तो ब्रह्म माध्व गौड़ीय संप्रदाय ये एक प्रामाणिक संप्रदाय है, और तीसरा संप्रदाय रुद्र संप्रदाय, विष्णु स्वामी संप्रदाय, और चौथा संप्रदाय है कुमार संप्रदाय जो निम्बार्क संप्रदाय कहा जाता है। तो ये चार संप्रदाय कलयुग में प्रामाणिक संप्रदाय है, बाकी सब संप्रदाय अप्रामाणिक है, प्रामाणिक नहीं है। तो यहां पर इसलिए भगवत पार्षद वृंद गोप कुमार से कह रहे हैं कि आपके जो गुरु हैं ये भगवान के अवतार हैं, और इनका नाम जयंत था, ये महान गुरु है, तो उनसे आपने दीक्षा प्राप्त की है, मंत्र को प्राप्त किया है, इसलिए आपका मंत्र सफल है, फल प्रदायक है। सत्यं प्रति ही वयमत्र भवन निमित्तम एवागता श्रृणुहितं निज कृत्यंगेतत्। तो ये भगवत पार्षद वृंद कह रहे हैं अब उनके वहां पर आने का उद्देश्य क्या है उसके संबंध में बता रहे हैं। गोप कुमार को उनके गुरु के संबंध में बता दिया कि उनके गुरु कौन है और कैसे प्रामाणिक गुरु हैं, सदगुरु हैं। अब ये लोग क्यों आए हैं मुक्ति धाम में, जो वैकुंठवासीगण, उनका मुक्ति धाम में क्या काम है, तो ये लोग वहां पर क्यों आए हैं, तो उसका कारण बता रहे हैं। कि सत्यं प्रति ही आप इस बात को सत्य माने। क्या सत्य बात माने? वयं अत्र भवत निमित्तम, कि हम लोग यहां जो मुक्ति धाम में आए हैं, हमारा यहां पर कोई काम नहीं है, किंतु इसलिए आए हैं भवन निमित्त, कि आपके निमित्त ही हम लोग यहां मुक्तिधाम में आए हैं, क्योंकि आप मुक्तिधाम में अभी स्थित हैं, इसलिए आपके पास हम लोग आए हैं, आपके कारण हम आए हैं यहां पर। और आने का कारण क्या है? एवागतः सुनहितं निजकृत्यं एतत्। और इसलिए आए हैं कि गोप कुमार को उनके हित की बात बताने के लिए, कि उनके लिए क्या हित होगा, क्या अच्छा होगा, ये बताने के लिए ये विष्णु पार्षदगण मुक्ति धाम में आए हैं। तो कहते हैं श्रुणु हितं निज कृत्यं एतत्, इसलिए आप सुनिए हम लोगों से, आपके लिए जो उपकारी हैं, उपकारी बातें हैं, हित की बातें हैं, और आपको अब क्या करना चाहिए इसके संबंध में बताने के लिए हम आए हैं आपके पास इस मुक्तिधाम। वैकुंठं इच्छसि यदि प्रविहाय सर्वम्, आप यदि उस वैकुंठ धाम को जाना चाहते हैं जो भगवान का निजी धाम है, जहां भगवान स्वयं निवास करते हैं वैकुंठ धाम में, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तो धाम परमं मम। भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि जिस धाम को एक बार प्राप्त होने पर व्यक्ति का इस भौतिक संसार में पुनरागमन नहीं होता है। तो विष्णु पार्षदगण कह रहे हैं कि यदि आप उस वैकुंठ धाम में जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। कहते हैं वैकुंठं इच्छसि यदि प्रविहाय सर्वम्, यदि आप वैकुंठ जाने के लिए इच्छा करते हैं तो आपको एक काम करना पड़ेगा। प्रविहाय सर्वम्, प्रविहाय, विहाय का अर्थ है त्याग करना, प्रकृष्ट रूप में प्रविहाय, प्रकृष्ट रूप में त्याग करना अर्थात पूरी तरह इसको त्याग कर देना। क्या त्याग करना है? कि मन में जो कर्म की वासना है, कर्म वासना, हम कर्म में प्रवृत्त होते हैं, इसलिए प्रवृत्त होते हैं क्योंकि हमारे हृदय में भोग की वासना है, हम भोग करना चाहते हैं, इसलिए कर्म में प्रवृत्त होते हैं। और कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, ज्ञान में प्रवृत्त होता है। तो ये कर्म और ज्ञान जो है ये संसार में बांधने वाला है व्यक्ति को। इस भोग प्रवृत्ति के कारण हम बार बार इस भौतिक संसार में जन्म ग्रहण करते हैं और संसार के बंधन में बंध जाते हैं, कष्ट भोग करते रहते हैं, दुख भोग करते रहते हैं। चाहे हम कितना भी प्रयास करें सुख भोग करने के लिए, हम सुख प्राप्त नहीं कर सकते इस भौतिक संसार में, क्योंकि ये दुखालयं अशाश्वतम, ये दुख का घर है और अनित्य संसार है, यहां कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। किंतु ये सब होने पर भी हम भोग की कामना को त्याग नहीं कर सकते। लोग बहुत गर्व के साथ कहते हैं कि हम कर्म करते हैं, तो ये क्या कर्म करते हैं कि भोग की प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं, जो उनको बांधने वाला, संसार में बांधने वाला कर्म करते हैं, और इसी में गर्व का अनुभव करते हैं कि हम कर्म करते हैं, ये भक्त लोग कोई कर्म नहीं करते, ये भक्तों की अवहेलना करते हैं। तो ये भक्त लोग जो कर्म करते हैं उनको इस संसार से मुक्ति दिलाने वाला वह कर्म है, किंतु जो कर्मी जन जो कर्म करते हैं संसार में वो कर्म उनको बांधने वाला है संसार में। संसार से वो मुक्त नहीं हो सकते, दुखों से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए वैकुंठवासीगण मार्ग बता रहे हैं गोप कुमार से, कैसे उस वैकुंठ को वे प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं विहाय सर्वम, जो कर्म की वासना है उसको त्याग दो पूर्ण रूप से। कभी कभी लोग सुख भोग की कामना से पुण्य कर्म भी करते हैं और पुण्य कर्म का फल होता है स्वर्ग को प्राप्त करना, स्वर्ग सुख को प्राप्त करना, और स्वर्ग में कुछ सुख प्राप्त कर लेने के बाद क्या होता है, उनका पुण्य समाप्त हो जाता है। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकं विशन्ति, जब पुण्य क्षीण हो जाएगा तब फिर उनको मर्त्यलोक में आना पड़ेगा, फिर कर्म में प्रवृत्त होना पड़ेगा। और जो ज्ञानी जन है उनका उद्देश्य होता है ज्ञान का अनुशीलन करेंगे, तपस्या आचरण करेंगे, सम दम का अभ्यास करेंगे और उस मुक्ति पद को प्राप्त होंगे। किंतु वह मुक्ति पद भी स्थायी नहीं है। आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदं तत पतन्ति अध अनादृत युष्मत अंग्रे, क्योंकि ऐसे लोग भगवान के चरण कमलों का अनादर किया है, इसलिए उस ब्रह्म पद में भी वो स्थिर होकर नहीं रह सकता, उनको नीचे आना पड़ता है, गिरना पड़ता है। कितना कष्ट करके गए हैं ब्रह्म पद को प्राप्त होने के लिए, वहां रह नहीं सकते। इसलिए कर्म और ज्ञान ये बांधने वाला है, ये मुक्ति दिलाने वाला नहीं है, वास्तविक मुक्ति इसमें नहीं है। अतः वैकुंठ पार्षदगण गो कुमार से कह रहे हैं विहाय प्रति प्रविहाय सर्वम सप्रेम भक्ति अनुतिष्ट नव प्रकार। तो वैकुंठ पार्षदगण कह रहे हैं कि ये कर्म और ज्ञान के मार्ग को त्याग करके आपको अब क्या करना चाहिए। कहते हैं सप्रेम भक्ति, प्रेम पूर्वक भक्ति करनी चाहिए। ये नहीं है कि हमें कोई नौकरी नहीं मिल रही है चलो इस्कन का भक्त बन जाए, या कोई दुख है चलो इस्कन का भक्त बन जाए, मंदिर में रहे आराम से प्रसाद प्रसाद मिलेगा, रहने की समस्या नहीं है। तो इसमें भक्ति में प्रेम नहीं आता है। तो हम जो सेवा करते हैं भगवान की, इसमें प्रेम होना चाहिए। ये नहीं कि बाध्य होकर करना पड़ता है, आश्रम में रहने के लिए कुछ तो सेवा करनी पड़ेगी, चलो जल्दी जल्दी कैसे करके खत्म करो, तो उसमें प्रेम नहीं है, इसलिए हमें आनंद प्राप्त नहीं होता है। सेवा में हमें आनंद इसलिए प्राप्त नहीं होता है कि हम प्रेम पूर्वक वो सेवा नहीं करते। और जब हम प्रेम पूर्वक सेवा करने लगेंगे तो कोई भी सेवा, चाहे झाड़ू सेवा ही क्यों ना हो, उसमें भी व्यक्ति आनंद को प्राप्त करेगा, भक्त आनंद को प्राप्त करेगा। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और भगवत पार्षदगण गोप कुमार से यही कहकर महत्व प्रदान कर रहे हैं कि सब प्रेम भक्तिम अनुतिष्ठ, प्रेम पूर्वक तुम भक्ति करो, भगवान की भक्ति करो प्रेम पूर्वक। और क्या करना है, नव प्रकार, किस प्रकार की भक्ति करना है, नव प्रकार, नौ प्रकार की भक्ति करना है। जैसे श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, नवधा भक्ति का वर्णन आता है, श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनं अर्चनं वंदनं दास्य सख्य आत्मनिवेदन। जे भगवान की कथा का श्रवण करना, भक्तों के मुख से भगवान की कथा का श्रवण करना और कीर्तन करना, भक्तों के साथ मिलकर नाम संकीर्तन करना और भगवान के गुण कीर्तन भी करना है। जो हम श्रवण करते हैं उसको दूसरों को बताएंगे, ये भी कीर्तन है। केवल बैठ करके हम हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं वो तो कीर्तन है ही, किंतु जब हम दूसरों को भगवान के बारे में बताते हैं वो भी कीर्तन है। तो श्रवण कीर्तन ये दो प्रकार की भक्ति हुई, और तीसरा है स्मरण। भगवान का स्मरण करना है मन में, तो हम श्रवण करते हैं थोड़े समय के लिए, कीर्तन भी थोड़े समय के लिए करते हैं, और बाकी समय क्या करेंगे? स्मर्तव्य सततं विष्णु, ये सदा सर्वदा 24 घंटे हमें मन में भगवान का स्मरण करना है, कृष्ण का स्मरण करना है। विस्मर्तव्य ना जातु चित, एक मुहूर्त के लिए भी भगवान को नहीं भूलना चाहिए, अर्थात नित्य निरंतर स्मरण होना चाहिए भगवान का। ये नहीं कि हमारा 16 माला समाप्त हो गया और सारा दिन के लिए हम भूल गए भगवान को। 16 माला हो गया उस समय थोड़ा बहुत सोच रहे थे, नाम ले रहे थे, उसके बाद भूल गए। तो शास्त्र में ये बताया गया है कि सततं विष्णु स्मरण, भगवान का स्मरण सदा सर्वदा 24 घंटे करना है, यहां तक कि सोते समय भी। यदि हम सारा दिन भगवान का स्मरण करेंगे तो सोते समय स्वप्न भी देखेंगे भगवान का, उसमें भी स्मरण हो जाएगा। और मन यदि और कहीं है फिर स्वप्न में हम भगवान को देख नहीं सकेंगे। तो इसलिए सतत भगवान का स्मरण होना चाहिए, ये भक्ति का एक अंग है। श्रवण कीर्तन और स्मरण, पाद सेवन, भगवान की सेवा करना, पाद सेवा, या भगवान की पाद सेवा सभी को प्राप्त नहीं होता है, किंतु यदि हम विग्रह की पूजा करते हैं तो हम सेवा कर सकते हैं, या हम स्वयं पूजा नहीं करते हैं, भगवान की जो भी सारी सेवाएं हैं उसको कर सकते हैं, जैसे मंदिर में झाड़ू लगाना है, भगवान का बर्तन मांजना है, भगवान के लिए रसोई बनाना है, ये सब भगवान की सेवा है। अर्चनं वंदनम, तो भगवान की पूजा करना है, आरती करना है, अर्चना करना है, भगवान को नहा देना है, वस्त्र पहनाना है, माला पहनाना है, भगवान के लिए माला गुंथना भी इसके लिए आवश्यक है, तो भगवान का श्रृंगार करना है, ये सब अर्चना में आता है। और ये सब करने के बाद भगवान को प्रतिदिन भक्त को प्रार्थना करनी चाहिए, वंदना। भक्त अपने भावों को भगवान के पास व्यक्त करना चाहिए, यद्यपि भगवान सभी के हृदय में है, परमात्मा के रूप में सभी के हृदय के भाव को जानते हैं, फिर भी भगवान ये देखना चाहते हैं कि मेरा भक्त क्या चाहता है, भुक्ति मुक्ति या भक्ति, क्या चाहता है? ये भोग चाहता है, मुक्ति चाहता है, ना मेरी सेवा चाहता है, क्या चाहता है? तो इसलिए भक्त को प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान को बताना चाहिए, अपनी इच्छा व्यक्त करना चाहिए कि प्रभु आपके चरणों में हमें स्थान दीजिए। तो ये प्रार्थना है, वंदना है। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनं अर्चनं वंदनं दास्य सख्य आत्मनिवेदन। और भक्त को सदा सर्वदा भगवान का, अपने को भगवान का सेवक मानकर सदा सर्वदा उनकी सेवा में लगे रहना चाहिए। ये सेवक भाव भक्त में आना चाहिए। वस्तुतः हमारे संसार के दुख का मूल कारण यही है कि हमें हमारे मन में भोक्ता भाव है, जबकि हम भोक्ता नहीं है किंतु भोक्ता भाव को रखते हैं, पोषण करते हैं कि हम भोग करेंगे। किंतु वस्तुतः कौन भोक्ता है? भगवान श्री कृष्ण। और भगवत गीता में भगवान कहते हैं भोक्तारं यज्ञ तपसं सर्वलोक महेश्वरम। इस संसार में जितनी सारी समस्या है इसका मूल कारण है भोक्ता भाव। और जब हम भोग करना चाहते हैं और दूसरा व्यक्ति उस भोग को करना चाहेगा तो हम में लड़ाई झगड़ा होगा, क्योंकि हम दोनों भोक्ता बन गए और वस्तु एक है। तो इसमें लड़ाई झगड़ा युद्ध इसी में से होता है, क्योंकि हमें भोक्ता भाव है। संसार की समस्याएं इसी से प्रारंभ होती है, भोक्ता भाव से। किंतु भगवान कहते हैं कि तुम भोक्ता नहीं हो, मैं ही सब कुछ का भोक्ता हूं, क्योंकि मैं ही जगत का ईश्वर हूं, सर्वलोक महेश्वर। तो ये भोक्ता भाव ही हमारे दुख का कारण है। तो इस संसार में दास्य भाव को लाना कि मैं भगवान का सेवक हूं, मैं भोक्ता नहीं हूं। जब इस भाव को हम लाएंगे, हृदय में अनुभव करेंगे, तब हम उपयुक्त स्थिति को प्राप्त हो जाएंगे। ये दास्य भाव ही हमें भगवान का निकटतर करेगा। और जब तक हमारे मन में भुक्ता का भाव है हम भगवान से दूर चले जाएं। भोग करने का भाव है, हमें ये चाहिए वो चाहिए, सब बहुत सारी शर्त है। तो ये इससे हम भगवान से दूर चले जाते हैं। जब सेवक का भाव आ जाएगा कि नहीं, हमारी कोई इच्छा नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, एकमात्र हमारी इच्छा हम भगवान की कैसे सेवा कर सके। तो भक्त यही चाहता है कि भगवान की सेवा प्राप्त हो जाए तो उसी में वो संतुष्ट रहता है। भक्त भगवान की सेवा के बिना कभी संतुष्ट नहीं रह सकता। इसलिए कभी कभी भक्तों को, यदि किसी भक्त को दंड दिया जाता है सेवा से, उसको हटा देते हैं। ये भक्त के लिए बहुत बड़ा दंड है यदि किसी को सेवा से हटा दिया गया, क्योंकि भक्त का वही एकमात्र आश्रय सेवा। इसलिए दास्य भाव को पोषण करना आवश्यक है। ये नवधा भक्ति का एक अंग है। तो श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनं अर्चनं वंदनं दास्य सख्य आत्मनिवेदन। और भक्त सदा सर्वदा भगवान को एकमात्र अपना बंधु मानेगा। हम लोग संसार में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, परिवार में रहकर हम सोचते हैं कि ये मेरे पिता माता हैं, ये मेरे पति हैं, ये मेरी पत्नी हैं, ये हमारे बाल बच्चे हैं, ये मेरे बंधु बांधव हैं, आत्मीय स्वजन हैं। तो ये सब हमारी सहायता करेंगे। तो जब तक हम इन लोगों पर, परिवार के सदस्यों के ऊपर निर्भरशील रहेंगे, तब तक हम भगवान के ऊपर निर्भरशील नहीं हो सकते। जब हम ये, हमें ये अनुभव होगा कि ये सब परिवार वाले कोई हमें सहायता करने वाले नहीं है, ये सब अपने स्वार्थ के लिए एक साथ रह रहे हैं परिवार, सभी का अपना अपना स्वार्थ होता है। वस्तुतः संसार का जो संबंध है ये स्वार्थ के ऊपर परिवेशित है। जहां स्वार्थ की हानि होती है वहां संपर्क टूट जाता है। पिता पुत्र में संपर्क टूट जाता है, पति पत्नी में संपर्क टूट जाता है, बंधु बांधव में संपर्क टूट जाता है जब स्वार्थ की हानि होती है। तो वस्तुतः हमारा जो संपर्क है इस संसार में, यह क्षणिक संपर्क है, किसी भी समय टूट सकता है। और इस पर हम इतना निर्भरशील हैं कि हम सोचते हैं जब कभी हमें कोई असुविधा होगी, कोई विपत्ति में पड़ेंगे, यहां तक कि मृत्यु के समय भी व्यक्ति अपने आत्मीय स्वजन को खोजता रहता है। यदि आत्मीय स्वजन पास में नहीं है, बोलता है उनको थोड़ा बुला दो, हम देखना चाहते हैं। मृत्यु के समय मरने जा रहा है व्यक्ति, किंतु आत्मीय स्वजन को स्मरण कर रहा है, भगवान का स्मरण नहीं हो रहा है। तो जब तक व्यक्ति ये अनुभव नहीं करेगा कि वस्तुतः ये सब के कोई भी हमें सहायता प्रदान करने वाले नहीं है, एकमात्र भगवान कृष्ण ही हमारे एकमात्र सहायक है, आश्रय है, एकमात्र बंधु है, एकमात्र सखा है, जब तक हम ये नहीं सोचेंगे तब तक हमारी रक्षा नहीं हो सकती। तो ये भक्ति का अंग माना गया है कि भगवान को अपना एकमात्र बंधु या सखा समझना, और ये समझ करके भगवान से प्रार्थना करना है कि हे कृष्ण, इस संसार में मेरा कोई नहीं है, आप ही मेरे एकमात्र आश्रय हैं। ये सोच करके उनके चरणों में आत्मसमर्पण कर देना है, अपने को समर्पित कर देना है कि आज से हे कृष्ण मैं आपका हूं, आप यदि हमारी रक्षा करेंगे नहीं करेंगे ये आपकी इच्छा। तो अपने को समर्पित कर देना है कृष्ण के चरणों में। ये नौ प्रकार की भक्ति भागवत में बताई गई। तो ये वैकुंठ के अधिवासीगण गोप कुमार को कह रहे हैं कि यदि आप वैकुंठ जाना चाहते हैं तो आपको ये नौ प्रकार की भक्ति का अभ्यास करना आवश्यक है। तो वैकुंठं इच्छसि यदि प्रति प्रविहाय सर्वं सप्रेम भक्तिं अनुतिष्ठ नव प्रकार तत्ज्ञापकं च भज भागवतादि शास्त्रं लीला कथा भगवत शृणु तत्र नित्यम्। पुनः ये वैकुंठ के अधिवासीगण गोप कुमार से कह रहे हैं, पहले तो उन्होंने बताया कि नवधा भक्ति का आचरण करने के लिए, नौ प्रकार की भक्ति का आचरण करने के लिए, अब और क्या करना है बता रहे हैं कि तद ज्ञापकम च भज भागवतादि शास्त्रम। ये नवधा भक्ति के जो ज्ञापक शास्त्र है, नवधा भक्ति का वर्णन करते हैं जो शास्त्र, इसमें श्रीमद् भागवत प्रधान शास्त्र। तो ये वैकुंठ के अधिवासीगण गोप कुमार से कह रहे हैं कि इस भागवत शास्त्र का भजन करो। तो ये भागवत शास्त्र का भजन कैसे होगा? तो भागवत शास्त्र का अध्ययन से हो सकता है और श्रवण से हो सकता है। तो भागवत शास्त्र का पाठ हम करेंगे, इसमें भगवान की लीला कथा का वर्णन है श्रीमद् भागवतम। और पाठ करने से और श्रेष्ठ है श्रवण करना। पाठ करके हो सकता है कि हम सब कुछ स्मरण नहीं रख सकते हैं, किंतु श्रवण ऐसा एक शक्तिशाली माध्यम है कि श्रवण के द्वारा आसानी से सरलता पूर्वक हम स्मरण रख सकते हैं। यदि हम ध्यान पूर्वक श्रवण करते हैं तो तुरंत हम स्मरण कर लेंगे उस बात को, जो पाठ करके हम स्मरण नहीं कर पाते। इसलिए बहुत शक्तिशाली माध्यम है श्रवण। तो कहते हैं तत्ज्ञापक च भज भागवतादि शास्त्रम लीला कथा भगवत श्रृणु तत्र नित्यम। तो श्रीमद् भागवतम में जो भगवान की लीला कथाएं, भगवान ने जो जो लीलाएं की है, तो उन लीलाओं का वर्णन है श्रीमद् भागवतम में। तो उन लीला कथाओं का नित्य श्रवण करना चाहिए। नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोक है, भक्तिर्भवति नैष्ठी। जब नित्य हम भागवत की सेवा करते हैं, भागवत का श्रवण करते हैं, उसका फल क्या होता है? भगवान के चरणों में नैष्ठी की भक्ति उत्पन्न हो जाती है, भगवान के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाती है भगवान की कथा श्रवण करते करते। जैसे भौतिक संसार में यदि हम किसी के बारे में बार बार श्रवण करते हैं तो स्वाभाविक रूप से उसके प्रति लगाव उत्पन्न हो जाता है। तो उसी प्रकार भगवान की लीला कथा जो अत्यंत मधुर लीलाएं हैं, जो अपने हृदय को आनंद प्रदान करने में समर्थ है, ऐसी लीला कथाओं का श्रवण नित्य प्रति करना चाहिए। इसलिए भागवत श्रवण को इतना महत्व प्रदान किया गया है। और श्रील प्रभुपाद ने तो हमारे इस्कन संस्था में प्रति मंदिर में नित्य भागवत श्रवण करने की व्यवस्था भी की कि नित्य प्रति भागवत का पाठ हो और सभी लोग श्रवण करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि कोई अपनी भक्ति में वृद्धि करना चाहता है भगवान के प्रति, तो उसको ये भागवत श्रवण करना आवश्यक है। और ध्यान पूर्वक श्रवण करना है, ये नहीं कि अटेंडेंस देना है भागवत क्लास में। और भागवत क्लास में नहीं जाएंगे तो फिर टेम्पल प्रेसिडेंट बुला करके पूछेंगे क्यों नहीं आया, इसलिए चलो बैठ जाते हैं, पीछे बैठ जाते हैं, जब इच्छा होगी उठ करके चले जाएंगे। ये नहीं है, जिसका आग्रह जितना अधिक होगा आगे आकर बैठेगा सुनने के लिए। तो आग्रह पूर्वक श्रवण करना चाहिए भागवत कथा। तो ये वैकुंठ के पार्षदगण गोप कुमार से कह रहे हैं कि नित्य भागवत का श्रवण करना है। और भागवत श्रवण करने से क्या होता है, कैसी प्रतिक्रियाएं होती है शरीर में भागवत श्रवण से? तो कहते हैं तायव कर्ण विवरम प्रणयात प्रविष्टः। यदि कोई श्रद्धा पूर्वक भागवत का श्रवण करता है तो ये बात कही गई कि श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना है। अश्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से कोई लाभ नहीं होगा। श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना है। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय। ये श्रद्धा क्या है ना? विश्वास, सुदृढ़ विश्वास। भगवान की कथा में ये विश्वास होना चाहिए। कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत है, क्योंकि जो कृष्ण भक्ति का अभ्यास करता है वो सारे कर्मों का संपादन एक साथ कर देता है। देवर्षि भूतात्त नृणं पितृणं न च किंकराय ऋणिं च राजन्। सर्वात्मनाय शरणं शरण्यं गतो मुकुंदं परिहृत्य कर्तु। यदि कोई मुकुंद जो मुक्तिदाता है उनका कार्य कर रहा है, उनकी सेवा कर रहा है, मुकुंद की सेवा, तो देवर्षि भूत आप्त नृणांग पितृणांग उनके प्रति हमारा जो कर्तव्य है, सारे देवताओं के प्रति जो कर्तव्य है, ऋषियों के प्रति जो कर्तव्य है, पिता माताओं के प्रति जो कर्तव्य है, और मनुष्य समाज के प्रति जो कर्तव्य है, इस सारे कर्तव्यों का संपादन कृष्ण भक्ति में हो जाती है। जब हम भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं तो अपने आप इन सारे कर्तव्यों का संपादन हो जाता है। सभी का ऋण हम चुका देते हैं, पिता माता का ऋण जो हमारे ऊपर है हम उनका ऋण उनकी सेवा करके चुका सकते हैं। किंतु यदि हम भगवान की सेवा के लिए पिता माता की सेवा को त्याग देते हैं, फिर भी भगवान की सेवा से पिता माता के ऋण हम चुका देते हैं, देवताओं के ऋण चुका देते हैं, समाज का ऋण चुका देते हैं, तो सभी का ऋण एक साथ चुक जाता है। हम पिता माताओं को भगवान की भक्ति करके उद्धार कर सकते हैं। तो ये ऋण चुकाना है। तो यहां पर ये वैकुंठ पार्षदगण कह रहे हैं कि ताएव कर्ण विवरं प्रणयात प्रविष्टा। यदि कोई श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है भगवान की कथा तो वो प्रेमपूर्ण जो कथा है जब कर्ण विवर में प्रवेश करती है तो क्या होता है? सद्य पदं भगवतः प्रभवन्ति दातुम। तो ये कर्ण रंध्र में प्रवेश करके भगवान की कथा अपने हृदय तक चली जाती है, हृदय को स्पर्श करती है। और भगवान की कथा हृदय को स्पर्श करने पर हृदय में जितने कलमश हैं, भोग की कामनाएं हैं, वो सब दूरीभूत हो जाती है भगवान की कथा श्रवण मात्र से। और यही भगवान की कथा सद्य पदं भगवत प्रभवंती धातुम। ये भगवान के परम पद अर्थात उनका जो धाम है परम धाम, उस धाम को प्रदान करने में ये कथा समर्थ है। जब हृदय शुद्ध हो जाएगा, हृदय में भगवान की भक्ति उत्पन्न हो जाएगी, भगवान के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी, तो व्यक्ति सरलता पूर्वक भगवान के धाम को प्राप्त करने में समर्थ हो जाए। तो ये श्रवण से प्रारंभ होता है कि कितना हम श्रद्धा पूर्वक श्रवण कर रहे हैं भगवान की कथा। तेषां नव प्रकरणं एकनैव सुसिद्धते। अब वैकुंठ पार्षदगण कह रहे हैं कि ये जो नौ प्रकार की भक्ति है, नवधा भक्ति, यदि कोई चाहे तो ये नौ प्रकार की भक्ति का आचरण कर सकता है। किंतु ये नौ प्रकार की भक्ति में एक एक विधि भी व्यक्ति को परम सिद्धि प्रदान करने में समर्थ है। इसका अर्थ, यदि कोई नौ प्रकार की भक्ति का अभ्यास नहीं कर सकता, केवल एक प्रकार की भक्ति का अभ्यास करेगा, मान लीजिए श्रवण, केवल श्रवण करके वो भी सिद्धि को प्राप्त हो सकता है। तो श्रवण करके किसने सिद्धि को प्राप्त किया? परीक्षित महाराज, उन्होंने केवल श्रवण किया सुखदेव गोस्वामी के मुख से और परम धाम को प्राप्त हो गए। उसी प्रकार कीर्तन, यदि कोई केवल कीर्तन करता है भगवान की कथा का या नाम संकीर्तन करता है, तो वो भी सिद्धि को प्राप्त हो सकता है। जैसे सुखदेव गोस्वामी, उन्होंने कीर्तन किया, भगवान की कथा का कीर्तन किया, वो सिद्धि को प्राप्त हो गए। तो उसी प्रकार स्मरण, केवल स्मरण करके भी व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त हो सकता है, और किसने प्राप्त किया है? प्रहलाद महाराज। बंधन में कौन है? अक्रूर जी। तो श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनं, पाद सेवन में लक्ष्मी देवी, पाद सेवन अर्चनम पृथु महाराज, बंधनम अक्रूर, दास्य हनुमान जी बजरंग बली, दास्य में सिद्धि को प्राप्त हुए, और सख्य में अर्जुन, और आत्मनिवेदन में बलि महाराज। तो तेसां नव प्रकारेण एक नैव सिद्धति सर्व साधन वरेण वैकुंठ साध्य सत्तम। तो ये जो साधन श्रेष्ठ है, जो नवधा भक्ति बताया गया, ये वैकुंठ प्रदान करने में समर्थ है। चाहे कोई सारी विधियों का अनुसरण कर सकता है या एक विधि का अनुसरण कर सकता है, चाहे कुछ भी करे, एक विधि का अनुसरण करे या सारी विधियों का अनुसरण करे। किसने सारी विधियों का अनुसरण किया था? अम्बरीश महाराज, उन्होंने नौ प्रकार की भक्ति का आचरण किया था। तो व्यक्ति चाहे ये सारी विधियों का आचरण करें या एक विधि का आचरण करें, उससे वो वैकुंठ धाम को प्राप्त हो सकता है। तेषां कस्मिंश्चित एकस्मिन् श्रद्धया अनुष्ठितेत सति स्वयं आविर्भवेत प्रेमा श्रीमद् कृष्ण पदाब्जय। तो कहते हैं कि कोई एक इसमें यदि श्रद्धा पूर्वक कोई अनुष्ठान करता है एक विधि का, तो उससे क्या होता है? स्वयं आविर्भवेत प्रेमा, उसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। किसके प्रति? भगवान कृष्ण के चरण कमल के प्रति। जैसे हम अभी बता रहे थे कि कर्ण विवर में प्रवेश करता है, हृदय शुद्ध हो जाता है और हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। तो ये हृदय में प्रेम उत्पन्न होने पर भगवान के चरण कमल के प्रति व्यक्ति उस वैकुंठ धाम को प्राप्त हो सकता है। तथापि कार्य प्रेमणेव परिहाराय हृद्रुजः फलांतरेषु कामस्य वैकुंठाप्ति विरोधिनः। तो ये वैकुंठ के अधिवासीगण कह रहे हैं गोप कुमार से कि यद्यपि भक्ति की ये विधियां भगवान के चरण कमलों के प्रति प्रेम प्रदान करने में समर्थ है, फिर भी वैकुंठ प्राप्ति में कुछ बाधाएं भी उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि कोई भी कार्य करने पर कुछ न कुछ बाधाएं आ जाती है, क्योंकि ये संसार जो है ये पदं पदं विपदं, प्रति पदक्षेप में यहां पर विपत्तियां है, यहां तक कि भक्ति साधन में भी बाधाएं उत्पन्न हो जाती है। ऐसे प्रहलाद महाराज केवल भगवान का स्मरण कर रहे थे, उसमें भी बाधा उत्पन्न हो गई और उनके स्वयं पिताजी बाधा बन गए। तो भौतिक संसार में ये बाधा उत्पन्न होना स्वाभाविक है। यदि कोई दूसरा व्यक्ति भी हमारी भक्ति में बाधक नहीं भी बनता हो, हमारा मन ही बाधक बन जाता है भक्ति आचरण में। इसलिए कहते हैं फलांतरेषु कामस्य, कि व्यक्ति के मन में जो कामनाएं उत्पन्न होती है, फलांतरेषु कामना अर्थात अन्य कामना, भगवान की भक्ति के अतिरिक्त जो कामनाएं, अन्य अभिलाषा। इसलिए स्वरूप गोस्वामी ने कहा है कि शुद्ध भक्ति है अन्य अभिलाष शून्यम, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तम। तो संपूर्ण अन्य अभिलाष व्यक्ति को शून्य हो जाना है। यदि शुद्ध भक्ति का आचरण करना है तो अन्य अभिलाषाओं से शून्य होना, कोई भी भौतिक अभिलाषा का पोषण नहीं करना, ये भक्ति में बाधा है, वैकुंठ प्राप्ति में बाधा है, भगवत धाम जाने में या भगवत धाम प्राप्ति में ये बहुत बड़ी बाधा है अन्य भौतिक कामना है। चाहे वो ज्ञान की कामना हो, कर्म की कामना हो, कुछ भी हो। फल अंतरेषु कामस्य वैकुंठाप्ति विरोधिना, इसलिए हृदय को संपूर्ण शुद्ध करने के लिए आवश्यक है कि बार बार भगवान की कथा का हम श्रवण करें और उनका नाम संकीर्तन करते रहें। और जब हृदय शुद्ध होता है फिर पुनः भौतिक कामनाएं उत्पन्न नहीं होती। जब हृदय में हृदय शुद्ध होकर हृदय में ये प्रेम उत्पन्न हो जाता है भगवान के चरण कमल के प्रति। यद्यपि एतादृशी भक्ति यत्र यत्र उपपद्यते तत्र स्थानम ही वैकुंठ तत्र तत्रैव स प्रभु। तो ये वैकुंठवासी जन कह रहे हैं यद्यपि एतादृशी भक्ति यत्र तत्र उपपद्यते, कि भगवान की भक्ति का जो आचरण इन नवविधा भक्ति के माध्यम से हम करते हैं, ये कहीं भी उपलब्ध हो सकता है। और यद्यपि ये उपलब्ध है तत्त स्थान ही वैकुंठ तत्र तत्रैव स प्रभु, आ जहां जहां ये भक्ति का आचरण होता है वो स्थान वैकुंठ में परिणत हो जाता है। जहां भक्तगण एतादृश भक्ति का आचरण करते हैं, नवधा भक्ति का या किसी अंग का, तो वो स्थान वैकुंठ में परिवर्तित हो जाता है। असल प्रभुपाद ने कहा है कि हमारे जितने मंदिर हैं इस्कन के, वहां भक्तगण भक्ति अनुष्ठान करते हैं तो ये वैकुंठ के समान है। तो हमारा हर मंदिर ये वैकुंठ के समान है और ये वैकुंठ पार्षदगण भी यही कह रहे हैं कि जहां जहां भक्ति का आचरण होता है वो स्थान वैकुंठ बन जाता है। और केवल वैकुंठ पार्षदगण नहीं कह रहे हैं, स्वयं भगवान भी इस बात का समर्थन कर रहे हैं। स्वयं भगवान विष्णु कहते हैं, नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। तो कहते हैं कि हे नारद, मैं वैकुंठ में स्थित नहीं हूं या योगियों के हृदय में स्थित नहीं हूं, मेरा भक्तगण जहां मेरा यशगान करते हैं, मेरा गुण कीर्तन करते हैं, नाम संकीर्तन करते हैं, मैं वहीं उपस्थित हूं। और जहां वैकुंठनाथ उपस्थित हो तो वह स्थान तो वैकुंठ बन ही जाएगा। तो ये गोप कुमार के प्रति कह रहे हैं वैकुंठ के आदिवासीगण कि यद्यपि जहां जहां भक्ति का आचरण होता है वो स्थान वैकुंठ बन जाता है, तब फिर वैकुंठ जाने की क्या आवश्यकता है, ये प्रश्न उठ सकता है कि जहां जहां हम भक्ति आचरण करते हैं भौतिक संसार में, यदि वो वैकुंठ बन गया फिर वैकुंठ जाने की क्या आवश्यकता है, हम यही सदा के लिए रहें? तो कोई ये प्रश्न कर सकता है। तो कहते हैं, तथापि सर्वदा साक्षात अन्यत्र भगवान तथा न दृश्यति इति वैकुंठे वैकुंठ अवश्य भक्तिर अपेक्षते। तो कहते हैं, यद्यपि जहां भक्तगण भगवान का गुण कीर्तन आदि करते हैं वो स्थान वैकुंठ के समान है, फिर भी भक्तगण वैकुंठ की अपेक्षा रखते, वैकुंठ जाना चाहते हैं। किस लिए जाना चाहते हैं? क्योंकि भगवान यहां भौतिक संसार में सर्वत्र दृष्टिगत नहीं होते, हम भगवान का दर्शन नहीं कर सकते, किंतु वैकुंठ में सदा सर्वदा और सर्वत्र भगवान दृष्टिगत होते हैं, भगवान का दर्शन कर सकते हैं, भगवान के साथ भावों का आदान प्रदान कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, प्रत्यक्ष सेवा। यद्यपि भौतिक जगत में हम भगवान की सेवा करते हैं, विग्रह की सेवा करते हैं, किंतु हम विग्रह के साथ बातचीत नहीं कर सकते, केवल वही शुद्ध भक्त बातचीत कर सकते हैं विग्रहों के साथ। विग्रह भी बात करते हैं, किंतु विग्रहों से बात करने के लिए बहुत शुद्ध होना आवश्यक है। तो भक्तजन इसलिए चाहते हैं कि वह भगवान का दर्शन करेंगे, अपने स्वरूप में भगवान का दर्शन करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, भावों का आदान प्रदान करेंगे और उनकी सेवा करेंगे, इसलिए भक्तगण वैकुंठ जाना चाहते हैं। यद्यपि वह सुविधा भौतिक जगत में भी उपलब्ध है, किंतु यहां भगवान का दर्शन हम सदा सर्वदा नहीं कर सकते, कभी कभी हो सकता है किसी शुद्ध भक्त को भगवान ने दर्शन दे दिया हो, किंतु फिर भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं, यहां सदा के लिए नहीं रहते हैं। जिस समय भगवान आए थे लीला करने के लिए, कुछ समय के लिए उन्होंने लीलाएं की, फिर अंतर्ध्यान हो गए, किंतु वैकुंठ में सदा सर्वदा भगवान निवास करते हैं और भक्तगणों को सदा सर्वदा आनंद प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार वैकुंठ के प्रति ये वैकुंठ पार्षदगण गोप कुमार के मन में ये उत्कंठा उत्पन्न कर रहे हैं। गोप कुमार अभी मुक्ति धाम में है तो ये वैकुंठ पार्षदगण सोच रहे हैं कि यहां इन्होंने भगवान का दर्शन किया है मुक्ति धाम में, तो यहां यदि चाहेंगे रुक जाने के लिए ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। मुक्ति धाम भक्तों के लिए नहीं है। तो वैकुंठ का वर्णन करके ये उनके मन में ये उत्कंठा उत्पन्न कर रहे हैं और शिवजी ने उनको बता दिया है कि तुम इस धाम को त्याग करके जाना चाहिए, यहां रहना नहीं चाहिए। शिवजी ने पहले बता दिया है। अब वैकुंठ अधिवासीगण आगे क्या कहते हैं गोप कुमार को हम कल श्रवण करेंगे, आज समय हो गया। हरे कृष्ण।